मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 12 मई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मित्रों स्वागत करता हूं अपने एक मित्र कमलेश चौरसिया का जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे GDP और राजकोषीय नीति यानी कि सकल घरेलू उत्पाद और फिस्कल पॉलिसी, मैंने एक हिंदी और एक अंग्रेजी का शब्द लिया है जानबूझ करके, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे मेल आते हैं कि सर आप इंग्लिश के शब्दों का भी इस्तेमाल कीजिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा उनको ज्वाइन कर दिया है। इसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मुझे नहीं मालूम कि लॉकडाउन के इतने लंबे दौर की यात्रा करने के बाद अब आप सबकी मानसिक स्थिति क्या है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि ज्यादातर लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो काफी घबराहट वाली है, परेशानी वाली है, द्वंद्व के दौर से गुजर रही है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है और बड़ी आशा भरी निगाहों से वो 17 मई की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शायद एक ऐसी घोषणा हो जाएगी कि जो गिरा हुआ शटर है वो ऊपर उठ जाएगा। मुझे लगता है मित्रों, मुझे पता नहीं 17 मई को क्या होगा, लेकिन आप देखिए कि धीरे धीरे हम शटर उठने की दिशा में तो बढ़ रहे हैं, है ना। न्यूज आप सुन रहे हैं, आप अखबारों में पढ़ भी रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि 17 मई के बाद बढ़ भी गया तो बड़ा लिबरल किस्म का कंट्रोल होगा, मतलब एक उदारवादी नियंत्रण होगा आप कह लीजिए। आप देखिए ट्रेनें शुरू हो गई हैं, भले ही तो कम शुरुआत की गई है, लेकिन एक संकेत दे दिया गया है कि अब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करेंगे, रेलवे रेल का आना जाना धीरे धीरे शुरू हो रहा है। जो ग्रीन जोन में है, जो ऑरेंज जोन में है, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज की भी परमिशन दे दी गई है, क्योंकि ज्यादा दिन तक आप इसे बंद नहीं रख सकते, तो थोड़ा थोड़ा खुलापन आने लगा है। और इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी खबरें भी आ रही है, नो डाउट कि हमारे यहां जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और उसे देखते हुए थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन दूसरी अच्छी चीजें भी हैं। स्वस्थ होने वाले का प्रतिशत बढ़ता चला जा रहा है, कल घोषणा हुई कि 31.15% हो गया है, जो एक बहुत अच्छी खबर है। यानी कि यह है कि चलिए अगर हमें कोरोना हो भी गया तो कम से कम उसके ठीक हो जाने की संभावना तो है, और ये जो संभावना ही हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा स्पेस प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के यह कि चाहे जो भी स्थिति हो, आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें, अपना संतुलन जरा भी डगमगाने न दे, जरा भी डगमगाने न दे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको प्री एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहनी है। मेरे पास मेल आते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग मेल आते हैं कि सर अब तो ऐसा ही लग रहा है कि एग्जामिनेशन की डेट बढ़ेगी, UPSC ने भी कह दिया है, तो फिर अब हम क्या करें। मैं आपसे ही पूछता हूं कि चलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन की डेट बढ़ रही है, तो आप बताइए कि अब आप क्या करेंगे, है आपके पास कुछ करने के लिए। ये मानसिकता ही मत लाइए, डेट बढ़ती है बढ़ने दीजिए, कोई नहीं बात नहीं है, लेकिन आप वही करिए जो आप कर रहे हैं, वो करते रहिए। अपने दिमाग को चुपचाप भागने का मौका मत दीजिए, क्योंकि लगातार वो अभी जो कर रहा है ना, उससे निकल करके भागने की कोशिश करता है यार, कि कोई ऐसा बहाना मिल जाए कि उस गली से बस हम सिर छुपा करके भाग जाएं कि यार अब डेट तो बढ़ गई है, अब क्या करना है तैयारी करके। ऐसा मत होने दीजिए। दोस्तों, आरोग्य सेतु को लेकर के जो अभी बातें चल रही हैं, देख रहे हैं आप उसके डेटा के संरक्षण को लेकर के आप बातें पढ़ रहे हैं, देखते हैं कि अगर आगे कुछ और होगा तो फिर उस पर बातें करेंगे। लेकिन आज जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो खबर है, अखबारों में इसे स्थान नहीं मिला है, एक आध अखबार नहीं, बहुत छोटे से रूप में इसे लिया है, और सिविल सर्विस यही आपकी सतर्कता को देखता है कि आप कितने सतर्क हैं सही मायने में। और दोस्तों, सच पूछे तो मेरी कोशिश होती है कि आपके बिहाफ पर मैं उस काम को कर सकूं, और अगर कर सक पाता हूं कह लीजिए तो मुझे बहुत आत्मसंतोष की अनुभूति होती है। आज अखबारों में, एक अखबार में मुझे एक शब्द छोटा सा मिला है पढ़ने को, वो है लिपुलेख। लिपुलेख है ना, घटना भी है वो। लिपुलेख क्या है, आइए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, और मुझे बहुत महत्वपूर्ण मालूम दिया, और उसका कारण यह है कि जो नेपाल सरकार है, उस सब नेपाल वहां यानी कि उनके विदेश मंत्री जो हैं, उन्होंने नेपाल में जो हमारे राजदूत हैं उनको बकायदे बुलाया, और बुलाने के बाद नाराजगी व्यक्त की। देखिए ऐसे ही होता है ना, अगर वो हमारे राजदूत को बुला करके नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, इसका मतलब है कि भारत के प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, हमारे एम्बेसडर तो वही है ना। और उन्होंने एक विरोध पत्र दिया, भारत सरकार को एक विरोध पत्र सौंपा। विरोध पत्र जो सौंपा है वो लिपु लेख के मामले में ही है। अब लिपु लेख क्या है? देखिए, लेख शब्द से ऐसा लगता है जैसा कि कोई वो वर्तनी वगैरह हो, कोई लेख हो, नहीं। लिपु लेख एक स्थान का नाम है, एक स्थान का नाम। सन 2015 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी चाइना गए थे तो चाइना के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट में ये बात कही गई थी कि ये जो लिपु लेख नामक स्थान है, स्थान का नाम है, यहां पर एक ट्रेडिंग पोस्ट खोला जाएगा, मतलब एक व्यापार करने का एक केंद्र खोला जाएगा, भारत और चीन के बीच में व्यापार का केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, चलिए, आपने फैसला कर, आपने एग्रीमेंट कर लिया, तो अब इसमें नेपाल कहां से आ गया? मैं आपको बहुत क्रमशः समझा रहा हूं दोस्तों, और जब मैं इस तरह से समझाता हूं ना तो आप यह मत समझिएगा कि मैं कोई टाइम पास कर रहा हूं। मैं एक लाइन में कहकर के इसे आगे बढ़ सकता था, मैं उसे कई एंगल से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं ताकि सिविल सर्विस एग्जाम अगर इस पर कुछ पूछता है तो आपको फंसा ना पाए, पहली बात। दूसरी बात, मैं अपने कहने के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी घटना को तैयार कैसे करेंगे। देखिए, मैं बार बार आप सबसे यही कहता रहा हूं कि मेरा डेली ऑडियो लेक्चर आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं है, मेरा जो डेली ऑडियो लेक्चर है वो आपको सक्षम बनाने के लिए है, आपको एम्पावर्ड करने के लिए है, है ना, आपको सशक्त बनाने के लिए है, राइट। तो इसलिए मैं इसको इस रूप में आपके सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों, अब आप देखिए कि ये जो लिपु लेख है, बेसिकली अब इसकी लोकेशन क्या है इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये जो स्थान है इसमें भारत का की सीमा है, हमारा हमारे उत्तराखंड की सीमा इससे लगती है, और इसके साथ ही साथ जो चीन का तिब्बत क्षेत्र है वो इससे लगता है, यानी कि उत्तराखंड है और चीन का तिब्बत क्षेत्र है। तो भारत का क्षेत्र हो, भारत का बॉर्डर हो गया, चीन का बॉर्डर हो गया, तो इस पर बकायदे एग्रीमेंट कर लिया दोनों देशों ने, ठीक है। अब ये जो लिपु लेख जो स्थान है ये 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, काफी ऊंचाई पर है ना, बहुत ही ठंडा रहता होगा। अब आप देखिए कि ये जो क्षेत्र है, जो हिमालय का दर्रा है जिसे आप इंग्लिश में पास कहते हैं, हिमालय का दर्रा है, तो इसका जो दक्षिणी भाग है, इसका जो सदर्न पार्ट है हिमालय दर्रा का, उसका उस जो दक्षिणी भाग है उस क्षेत्र का नाम है काला पानी, इसे भी याद रखिएगा, काला पानी क्षेत्र। इस क्षेत्र पर नेपाल शुरू से लगातार अपना अधिकार जताता रहा है कि नहीं, ये जो क्षेत्र है इस पर हमारा अधिकार है, ये हमारे इस भाग अधिकार क्षेत्र में है। अभी वर्तमान में यह भारत के नियंत्रण में है, तो चूंकि वर्तमान में भारत के नियंत्रण में है तो भारत ने चीन से कर दिया कि भैया ठीक है, हम यहां एक ट्रेडिंग पोस्ट खोल देते हैं क्योंकि भारत के नियंत्रण में है। नेपाल विरोध जता रहा है कि नहीं, चूंकि हम शुरू से इसे अपना क्षेत्र मानते रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यह हमारा है, तो उसने अपना विरोध जताया है। अभी क्यों विरोध जताया? अब आप देखिए, हम बात तो कर रहे हैं 2015 की, तो अभी क्यों विरोध जताया भैया, वो 5 साल तक क्या हो रहा था? उसका कारण यह है फ्रेंड्स कि अभी 8 तारीख की होगी शायद, मेरे से 7-8-9 के आसपास ही समझ लीजिए कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया, एक रोड का उद्घाटन किया, लगभग 80 किलोमीटर ये जो सड़क है, इस ये जो क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए सड़क का अब इससे क्या संबंध है कि वो उत्तराखंड में एक स्थान है हमारा धारचूला, धारचूला से लिपु लेख दर्रे को जोड़ेगी, तो अगर हम उसको ट्रेडिंग पोस्ट बनाएंगे तो वहां से हमको अब रोड तो चाहिए ना कि हमारा वहां से सामान अंदर आ सके, हमारे देश में आ सके और हम वहां तक सामान पहुंचा सके, तो उसके लिए रोड चाहिए। तो उस रोड का उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री जी ने किया, तो अब सीधी सी बात है कि एक्शन शुरू हो गया, भारत ने एक्शन लेना शुरू किया है, तो उन्होंने भारत के प्रति इस बात को लेकर विरोध जताया है। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि भाई लिपु लेख ऐसी क्या बड़ी बात हो गई, उसको इतना महत्वपूर्ण क्यों मान रहे हैं सर? दोस्तों, मैं इसलिए महत्वपूर्ण मान रहा हूं, देखिए जो सिविल सर्विस की जो प्रिपरेशन होती है वो केवल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनका कलेक्शन होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन सी होती है इसके बारे में आपकी समझ होनी चाहिए। तो ये इसलिए है क्योंकि देखिए ये नेपाल से जुड़ा हुआ मामला है, चीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेपाल से जुड़ा हुआ मामला है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, भारत का पड़ोसी देश है, भारत का बहुत ही मित्र राष्ट्र है, और उस दूसरी ओर चीन लगातार नेपाल पर अधिकार जमाने की, अधिकार उस तरह से नहीं कहना चाहिए, ये कह लीजिए कि बहुत क्लोज पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो नेपाल के साथ अपने संबंधों को और बेहतर बनाए। पिछले कुछ मामलों को लेकर के संबंधों में थोड़ी सी खटास आ चुकी है और ये फिर से एक मामला आ गया, तो भारत के लिए एक चुनौती हो गई ना, भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर के, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट दोस्तों, तो फ्रेंड्स अब मैंने इसके बारे में, लिपु लेख के बारे में कुछ इतने विस्तार से आपके सामने अपनी बातें रखी हैं कि मुख्य विषय के बारे में इनफैक्ट बात करने का अब वक्त नहीं रह गया है। इसलिए जो शुरू में मैंने आपको टॉपिक बताया था, उस टॉपिक को मुझे विड्रा करने की आप सबसे इजाजत चाहिए और आज के मुख्य विषय के रूप में आप लिपु लेख को ही मानकर चले, क्योंकि जो विषय मैंने आपको बताया था जीडीपी और फिस्कल पॉलिसी को लेकर के, बहुत खूबसूरत विषय है, बहुत मजेदार विषय है, इस पर मैं डेफिनेटली आप लोगों से बात करूंगा। और इस विषय को मैंने इसलिए चुना था कि मैंने आज आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल प्रोवाइड किया, आर्टिकल क्या, वो एडिटोरियल कमेंट है, उसमें जीडीपी वगैरह की बात की गई है, तो आप उस लेख को अच्छे से समझ सकें, इसलिए मैंने इस विषय को चुना था। लेकिन लिपु लेख की चर्चा करते समय उसके इतने एंगल आते चले गए कि मुझे लगा कि ठीक है अब इसे ही मुख्य विषय के तहत ले लेते हैं, छोटा मोटा तरीके से, छोटे मोटे तरीके से बता करके कट कर देने की नीति मेरी दोस्तों होती नहीं है, इसलिए मैं अपने उन शब्दों को वापस लेने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। आप बिजनेस स्टैंडर्ड के उस एडिटोरियल को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, हो सका तो अगर कोई कल बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं हुआ तो उस पर हम लोग बातें करेंगे। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, मनीषा माली, नितेश शर्मा, शांति यादव, प्रवीण कुमार पप्पू और अनंत सांघी कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।